नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय भाई बहनों, प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आप इसमें चारों अनुयोगों की सार्थकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि गणधर भगवान ने द्वादशांग रूप से निबद्ध किया, जिसे 11 अंग और 14 के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वह संपूर्ण द्वादशांग उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने गौतम गणधर स्वामी की वाणी के आधार पर उस जिनवाणी को चार अनुयोगों में निबद्ध किया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। पढ़ते ना, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, यही है चार अनुयोग। इसमें चलते हम कि 11 अंग 14 पूर्व रूप जो श्रुत समुद्र में कोई विषय अपूर्ण नहीं है, अर्थात जब ये कह दिया जाए कि 11 अंग 14 पूर्व का सार है जहां, तो उसमें विषय सभी हैं, बस सार रूप में है, क्योंकि ये पंचम काल है। पंचम काल में कोई तीर्थंकर भगवान नहीं है, गणधर भगवान नहीं है। चतुर्थ काल के अंत में जो कुछ हमें गौतम गणधर स्वामी दे गए, आज उनके अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। इसीलिए पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी हमेशा गौतम गणधर स्वामी के उपकारों का स्मरण कराती हैं और इस बात को कहती हैं कि आज द्वादशांग लेखनी पद नहीं किया जा सकता। हम सब बहुत छतस्थ ज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी हैं, और जैसे समुद्र में राई, उस प्रकार से हम सबको बहुत छोटा सा ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पर हमें जिनवाणी से अतिरिक्त और कुछ कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, नहीं कथन करना चाहिए। ये बात कही है कि 11 अंग और 14 पूर्व श्रुत समुद्र में कोई विषय अपूर्ण नहीं है, जो अष्टांग निमित्त, अष्टांग आयुर्वेद, मंत्र तंत्र आदि सभी विषय इसमें आ जाते हैं, कोई विषय छूटा नहीं है। आज द्वादशांग रूप से शुद्ध ज्ञान उपलब्ध नहीं है। हाँ, अग्रायणीय नामक जो द्वितीय पूर्व के चयन लब्धि नामक चतुर्थ अधिकार का ज्ञान श्री धर सेन आचार्य को था, जिनके प्रसाद से वह षटखंडागम ग्रंथ में निबद्ध हुआ है। अर्थात धर सेन आचार्य के ज्ञान को पुष्पदंत और भूतबली नाम के दो मुनियों ने प्राप्त किया और उन्होंने उस ज्ञान को षटागम रूप से निबद्ध किया, जो आज छह खंड रूप आगम में यानी 16 पुस्तकों में निबद्ध है, और असाय पाहुड़ ग्रंथ के रूप में एवं महाबंध ग्रंथ के रूप में आज हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस द्वादशांग रूप शास्त्र को आचार्य ने चार अनुयोगों में निबद्ध किया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चारों ही अनुयोग सभी भव्य जीवों को रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के कारण हैं। यानी इन ग्रंथों को पढ़ने से लोग रत्नत्रय की ओर अग्रसर होते हैं, मोक्ष मार्ग में लगते हैं, दुराचार से सदाचार की ओर बढ़ते हैं और नग्न दिगंबर मुनियों के प्रति श्रद्धा करते हैं, और वे मुनि जो होते हैं वे मोक्ष मार्ग का हमें दिग्दर्शन कराते हैं। मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप चतुर संघ के द्वारा आज जो जिन धर्म की मोक्ष मार्ग की महती प्रभावना हो रही है, वह इस पंचम काल के अंत में समझो कि मोक्ष का साक्षात मार्ग है। इन अनियोग रूप द्रव्य स्रोत से उत्पन्न हुआ भाव स्रोत परंपरा से केवल ज्ञान का कारण है। आज अपन क्या समझते हैं, हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, क्योंकि जरा सा भी कुछ सुनते भी हैं तो थोड़ी सी देर में उसको भूल जाते हैं। ये एक जन साधारण की बात है कि आज बहुत अज्ञान है। अज्ञान के अंधेरे में थोड़ा बहुत ज्ञान जुगनू की तरह से मिल जाता है, तो वह भी उसका भी हम मूल्यांकन करें कि एक ना एक दिन वो हमें केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण बन जाएगा। तो उसके लिए उत्तर पुराण में और धौला ग्रंथ के अंदर कहा है बहुत सुंदर बात, विनयेन सुध मदीदम जदि विपमादेन हो दिवि सरिदम तम उवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवदी। ये प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के 125 पृष्ठ पर स्वाध्याय चल रहा है, उसमें पूज्य माता ने इस गाथा को यहाँ कोट किया है धौला ग्रंथ से और उत्तर पुराण से। इसका मतलब ये है कि विनय पूर्वक श्रुत को जरूर पढ़ना चाहिए। पहले आपने देखा होगा मंदिर में कोई बड़े लोग या पंडित जी अलमारी से शास्त्र को निकाल करके बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर सिर पर लेके आते और सब लोग उठ करके खड़े हो जाते थे। ग्रंथ को चौकी पर विराजमान किया जाता, सब लोग उसे नमन करके और बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ने वाले पढ़ते और सुनने वाले सुनते। ये क्या है, ये श्रुत का विनय है, ये शास्त्र का विनय है, ये शास्त्र को बनाने वाले का विनय है। और ऐसा ऐसी विनय करने से ही उसमें जो वर्णित ज्ञान है वो को संसार से पार कराने में कारण होता है। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा कि जो विनय पूर्वक श्रुत को पढ़ते हैं, यदि प्रमाद से वो भूल भी जाते हैं, सब लोग सुनो इसको, कि यदि प्रमाद से भूल भी जाते हैं, क्योंकि भूलना स्वभाव है, आज मन मस्तिष्क के अंदर ह्रास हो रहा है। पहले लोग एक बार पढ़ते उन्हें याद हो जाता था। अकलंक और निकलंक की कहानी पढ़ते हैं, अकलंक देव को एक बार पढ़ने से वो जीवन भर नहीं भूलते थे, और निकलंक जो उनके भाई थे उन्हें दो बार पढ़ना पड़ता था, एक बार पढ़ते थे और एक बार अपने भाई के से उसका रिवीजन करते थे। दो बार पढ़ने पर फिर उन्हें हमेशा याद रहता था। धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास हुआ, लोग भूलने लग गए बहुत ज्यादा, लेकिन आज भी ऐसे श्रुत के मर्मज्ञ जो हमेशा इस श्रुत के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, माने पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, ऐसे संत विद्वान उस श्रुत को खूब याद करते हैं। आज देखो ज्ञानमती माता जी को क्या 90 साल की उम्र है, लेकिन आप किसी भी विषय को पूछेंगे तो ये कम से कम 80 85 साल पहले जो इन्होंने पढ़ा था वो आपको बता देंगे। इस ग्रंथ को खोलो वहां ऐसा विषय मिलेगा। ये क्या है, बहुत विनय के साथ इन्होंने श्रुत को पढ़ा है। तो आप भी आचार्य कहते हैं कि आप विनय पूर्वक श्रुत को पढ़ें, यदि प्रमाण से भूल भी गए विस्मृत भी हो गया तो वो अगले भवों में केवल ज्ञान तक प्राप्त कराने में आपको कारण बनाएगा। ये क्यों कहा, क्या आप इसलिए ना पढ़ें कि हम तो भूल जाते हैं, क्यों पढ़ें, नहीं, पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे स्पष्टम भविष्यति, आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा। इस भाव में नहीं होगा तो अगले भाव में हो जाएगा, और उससे अगले भावों तक चिंतन करते रहना तो कभी भी केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में भी कारण बन जाएगा। इसलिए इस गाथा को यहाँ कोट करके पूज्य माता ही बताती हैं कि ये समस्त श्रुत ज्ञान की महिमा है, केवल एक किसी अनुयोग के ज्ञान की नहीं है कि हमने प्रथमानुयोग पढ़ लिया बस, कर्णानुयोग पढ़ लिया। जो भी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र तो शास्त्र है, बस इतना होना चाहिए कि आचार्यों के द्वारा लिखा गया शास्त्र हो, तो उसको पढ़ने से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अगले अगले भावों में भी वो हमको ज्ञान प्राप्ति में कारण बन जाता है। श्री कुंद कुंद देव भी उस ज्ञान के बारे में कहते हैं, जिन वयण मोसहमिणम विषयसुवीरेयणम अमिदभूतम जर मरण बाह्य हरणम क्षय करणम सवदुखानम। कहते जिन वयण मोसा मिणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन क्या है, परम औषधि है। जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेते हैं, सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी मेडिसिन क्या है, भगवान के वचन। विषय सुख विरेणम अमित भूतम, जो विषय सुखों का विरेचन कराने वाले हैं, त्याग कराने वाले हैं, और अमृत के समान है, जो जिसको एक बार जिनवाणी सुनने का, प्रवचन सुनने का चस्का लग जाए तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, और जिसको नहीं लगता अच्छा तो चले भी जाते हैं जबरदस्ती, तो सोने लग जाते हैं, नींद आने लग जाती है, या उठ करके भाग जाते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता, ना आए समझ में नहीं आता, मिठाई पता नहीं है कि रसगुल्ला कैसा है, जलेबी कैसी, फिर भी उसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, मीठी लगेगी। ऐसे ही हमें नहीं पता हो कि कौन सा विषय हमारे लिए क्या हित करेगा, क्या कल्याण करेगा, तो भी उसको सुनने से अमृत के समान वह कल्याणकारी होता है, जन्म जरा मृत्यु का निवारण करने वाला है, यानी जन्म मरण व्याधियां हैं तो बाह्य हरणम उन व्याधियों को हरण करने वाले हैं भगवान के वचन। क्षय करणम सब दुखानम, और समस्त दुखों का क्षय करने वाले हैं, ऐसे भगवान के वचनों को कहा है। यह मूलाचार के अंदर गाथा 286 में बताया, दर्शन पहुड़ के अंदर बताया कि ऐसे भगवान जिनेंद्र के वचनों को आप ध्यान में रखें, अमृत के समान उनका पान करें, और मिश्री के समान वह हमेशा हर प्राणी के लिए कल्याणकारी होते हैं, दुखों का क्षय करने वाले हैं। इसीलिए स्वाध्याय जरूर करना। अगर आप ज्ञानमती माता के पास आए हो और सच्चा फल लेकर के जाना चाहते हो, तो नियम करके जाना कि हम प्रतिदिन एक शास्त्र की 4 लाइन जरूर पढ़ेंगे, 4 लाइन पढ़े बिना सोएंगे नहीं, ऐसा नियम करके जाना। उन 4 लाइनों में से पता नहीं कौन से 4 शब्द आपके जीवन के लिए अमूल्य अंग बन जाए। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है, और श्रुत ज्ञान को महान वृक्ष की उपमा भी दी है आचार्यों ने। श्रुत ज्ञान माने सच्चे शास्त्रों का ज्ञान, जैसे हमारे पद्म पुराण, आदि पुराण, मूलाचार, रत्न ग्रंथ शाकाचार, समय सार, गोमर सार, ये सब ग्रंथ जो हैं वो हमारे लिए स्वाध्याय के योग्य हैं। तो उसको उपमा इसलिए दी है, अनादि काल की अविद्या के संस्कार से प्रत्येक मनुष्य का मन बंदर के समान अतीव चंचल है। देखो अभी जरा सी देर में कहाँ की कहाँ पहुंच जाता है बंदर, तो फिर भी लिमिटेड, जितनी उसकी शक्ति वहीं तक कूद करके जाएगा। आपका मन तो अभी जरा सी देर में कहो अमेरिका पहुंच जाए, घर पहुंच जाए, तो ये मन को कहा बंदर। जैसे बंदर को कंट्रोल करना आवश्यक होता है, बहुत चंचल होता है वो, ऐसे ही मन भी चंचल है, उसको कंट्रोल करने के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी इस शुद्ध ज्ञान को महान वृक्ष की उपमा देते हुए कहते हैं। अनेकांतात्मार्थ प्रसव फल भाराति विनते वचः पर्णा कीर्णे विपुल नये शाखा शतयुते समुत्तुंगे साम्य प्रतत मति मूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्दे धीमान् रमयतु मनोमर्कट ममुम। क्या कहते हैं हे बुद्धिमान सज्जनों, आप अपने मन रूपी बंदर को यदि भस्मी करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। जो श्रुति स्कंद रूपी वृक्ष है, अनेक धर्मात्मक पदार्थ रूप फूल एवं फलों से अतिशय झुका हुआ है। जिसके अंदर फल लग जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ऐसे जो ग्रंथ, जो धर्म, जो श्रुति इसका स्कंद है, उसको वृक्ष की उपमा दी है। उसमें बहुत सारे साद्वाद, अनेकांत, कर्मबंध, चारित्र, इन सब को मिला करके तमाम स्कंदों फूल और फलों से युक्त होकर के वो वृक्ष खूब झुका हुआ है, लदा हुआ है, एकदम वचनों रूपी पत्तों से व्याप्त है, विस्तृत नयो रूप सैकड़ों शाखाओं से युक्त है, उन्नत है, बहुत ऊंचा है तथा समीचीन एवं विस्तृत मति ज्ञान रूपी जड़ से स्थिर है। उस श्रुत स्कंद वृक्ष के ऊपर बुद्धिमान साधु अपने मन रूपी मंदर बंदर को प्रतिदिन रमण करावे। ऐसी प्रेरणा दी है आचार्य देव ने, यानी कि खूब स्वाध्याय करें तो मन अपने बस में हो जाएगा। इस श्रुति स्कंद वृक्ष में चारों ही अनुयोग समाविष्ट हैं, क्योंकि एक अनुयोग से होने वाला ज्ञान अपूर्ण है, वह अधूरा है। जब चारों अनुयोगों के कुछ कुछ ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो समझो कि वह ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और आज का श्रुत ज्ञान आगे कभी ना कभी केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण बन जाएगा। इसलिए कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और असली दूध की परीक्षा हो सके। अपने आत्म तत्व के अंदर जो ज्ञान का अमृत भरा हुआ है, उस अमृत का पान करने के लिए जितना जितना स्वाध्याय करते हैं उतना उतना समझो अज्ञान का विनाश होता है। देखो कहीं पर्दा लगा हुआ है तो पीछे की चीज नहीं दिखती, और जैसे जैसे पर्दा हटाते हैं वो चीज उतनी उतनी चीज दिखने लगती है। ऐसे ही हमारे ज्ञान के सूर्य के आगे अज्ञानता का पर्दा लगा है। जब हम पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उतना जितना अज्ञानता का पर्दा हटा उतना ज्ञान अपने प्रकट होता चला जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम इस अध्याय के अंदर शास्त्र के स्वाध्याय की महिमा पर प्रकाश डाला है। आगे चारों अनुयोगों के बारे में बताएंगे, और आपको ये बताना है कि आपकी इस चैप्टर की और आगे आने वाला है पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, इन दो चैप्टर के अंदर लगभग 45 से 50 पेज हैं, इनकी परीक्षा हम आपसे लेंगे 30 नवंबर को। 30 नवंबर यानी 29 नवंबर तक आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, और उसके बाद जैसे अन्य विषयों की परीक्षा देते रहे हैं और प्रवचन निर्देशिका की भी परीक्षा दी है, आप एक दूसरे को, सबको, जिज्ञासु जो हमारे स्वाध्यायी लोग हैं, एक दूसरे को सूचित कर दीजिए कि 30 नवंबर को प्रवचन निर्देशिका के दो चैप्टर की परीक्षा होगी, चारों अनुयोगों की सार्थकता और पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व, इन दोनों की तैयारी आप करें। बराबर पढ़ाई चलेगी, 3:30 बजे से उपस्थित होकर के ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। और अब हम चलते हैं गुरुओं की अर्चना की ओर, जिनसे हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपलब्धि प्राप्ति होती है। उन गुरुदेव शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे।